अभी नहीं शुरू कर रहे, चंद मिनटों के बाद शुरू कर रहे हैं। الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا الى الاخر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو سورہ مریم کی ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیا اپنی کلاس میں، جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان سے لے کر کے آگے 63 آیت تک 63 تک پڑھ لی تھی. ترجمہ اور خلاصہ تفسیر مکمل ہو گیا تھا، معارف و مسائل بھی شروع کر لیے تھے، اور ان کے اندر ہم نے پہلی آیت کے اس حصے تک کے معارف و مسائل پڑھے تھے اور ڈسکس کیے تھے، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ انہوں نے اتباع کری خواہشات کی، شہوات کی. ٹھیک ہے، پہلی آیت تھی کہ جس میں جو انبیاء علیہ السلام کے خلف کا ذکر کیا گیا، بلکہ خلف کا ذکر کیا گیا. خلف کون تھے؟ بری اولادیں، برے قائم مقام، برے جانشین. ٹھیک ہے، تو ان کو عربی میں خلف کہتے ہیں. تو یہ جو خلف ہیں، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے خاصیت کیا بیان کری، خصوصیت یا ان کی صفات کیا بیان کریں؟ دو باتیں، ایک تو اضاعوا الصلاۃ، کہ نماز کو ضائع کریں گے، ٹھیک ہے، اور دوسری واتبعوا الشہوات، اور یہ شہوات کی اتباع کریں گے، شہوات کے پیچھے جائیں گے. یعنی شہوات کہاں سے ہوتی ہیں؟ یعنی شہوات کی اتباع کیا مطلب؟ کہ شہوات کسی انسان کا نام ہے، شہوات کسی جن کا نام ہے، شہوات کسی فرشتے کا نام ہے، یا شہوات کسی چیز کا نام ہے؟ کیا ہے یہ شہوات؟ کے وہ آگے آگے چل رہی ہیں، یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. شہوات کسی فزیکل ٹینجبل کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ شہوات جو ہیں یہ ایک انٹینجبل چیز ہے. یعنی یہ ایک غیر مادی، غیر جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرمز کے لیے جو ہمارے علوم میں استعمال کی جاتی ہے، آپ سے کسی کو اگر یاد ہو، یعنی جس کا کوئی بدن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، یعنی یہ ایک غیر بدنی چیز ہے، ٹھیک ہے، ٹپ آف دا ٹنگ میں ہوتا ہے جس طرح، اور وہ باہر نہیں آ رہا، یہ معاملہ ہے. تو یہ شہوات جو ہے یہ ان کا کوئی بدن نہیں ہوتا، تو پھر یہ کہاں سے پروڈیوس ہوتی ہیں، کہاں سے یہ جنریٹ ہوتی ہیں نا؟ تو یہ ہمارے وجود کے اندر، ٹھیک ہے، انسان کا جو وجود ہوتا ہے، اس وجود کے اندر آپ کو سبھی کو معلوم ہوگا کہ دو چیزوں سے مل کر ہم بنے، ٹھیک ہے، دو چیزوں سے مل کر بنے نا ہمارا وجود. پہلا تو ہمارا بدن، ٹھیک ہے، غیر اہم تو ہے لیکن بہرحال بدن ہے، ایک کنٹینر ہے، ایک برتن، گویا کہ ایک برتن کی مانند ہے، اور اس برتن کے اندر، اس کنٹینر کے اندر ہماری روح موجود ہے. یہ روح اور بدن یہ مل کر کے ہمارا وجود بنتا ہے، ٹھیک ہے. اب بدن کے اجزاء تو پتہ ہی ہیں، سر ہے، پیٹ ہے، ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، یہ سب ہمارا بدن کے اجزاء ہیں. اسی طریقے سے جو روح ہے ہماری، اس روح کے اندر بھی کچھ اجزاء ہیں، کچھ اس کے بھی حصے ہیں، کچھ اس کے بھی مقامات ہیں روح کے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ تفصیل تو ہمیں روح کی نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تفصیل انسانوں کو بتائی ہی نہیں، लेकिन कुछ इजमाली कुछ हाई लेवल डिटेल्स अंबिया को बताई और औलिया को इल्हाम फरमाई कि हाँ रूह के अंदर भी थोड़े इस तरह के अज्जा वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इस रूह के अंदर ना दो, बल्कि कहा जाए तो एक जुज होता है, दो यानी तादाद को छोड़ें कि दो हैं कि तीन है कि चार है, बल्कि बस इतना कि जो अहम अज्जा हैं उनमें से एक बहुत अहम जुज वो कहलाता है अकल। ठीक है, अकल, ये अकल रूह के अंदर एक एक सलाहियत कह लें आप इसको, या रूह का एक हिस्सा कह लें आप इसको। ठीक है, बहरहाल अकल जो है वो रूह रूहानी चीज है, रूह का हिस्सा है। ठीक है, ये अकल क्या करती है, अकल फैसले करती है। ठीक है, अकल फैसले करती है। अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया ना इंसान को कि वो उसके सामने जब दो रास्ते आए, नेकी का रास्ता और बदी का रास्ता, तो इन दोनों रास्तों में से वो जो चाहे इख्तियार कर ले, नेकी का रास्ता इख्तियार कर ले, बदी का रास्ता इख्तियार कर ले। ठीक है ना, सच बोलना पसंद कर ले या झूठ बोलना पसंद कर ले अपने लिए, ये इख्तियार किसको दिया, हमारी रूह में से, हमारी रूह का जो अकल वाला हिस्सा है ना उसके पास ये इख्तियार है कि वो चूज करे सही को या गलत को। ठीक है, तो इख्तियार किसके पास है, अकल के पास है। अब अकल जो है ना ये किसी किसी यानी ये दिमाग का नाम नहीं है कि दिमाग जो है वो अकल है, बल्कि दिमाग तो जिस्म का एक हिस्सा है। ठीक है, हाँ अकल का दिमाग के साथ एक ताल्लुक जरूर है, जैसे कि इंसान के अंदर दिमाग है तो अकल जो है वो दिमाग के अंदर मौजूद होती है और दिमाग के साथ साथ और जरा बाहर भी निकली हुई होती है। क्या क्या मतलब इसका कहने का, मतलब ये है कि अगर किसी इंसान के अंदर दिमाग ही नहीं है ना, दिमाग अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी हो गई कि दिमाग बन ही नहीं सका, दिमाग वो सर के अंदर, ठीक है, तो अकल भी नहीं होगी, क्योंकि अकल का ताल्लुक दिमाग के होने से है। अगर दिमाग है तो अकल होगी, अगर दिमाग नहीं है तो अकल नहीं होगी। ठीक है, तो दिमाग के साथ अकल का एक ताल्लुक है, लेकिन जरूरी नहीं कि दिमाग है तो अकल भी है, ये जरूरी नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे जानवर हैं जिनके अंदर दिमाग है लेकिन उनके पास अकल नहीं। ठीक है, दिमाग तो है ना भाई, सब बंदर में भी दिमाग होता है और हाथी में भी दिमाग होता है, शेर में भी होता है और परिंदे में भी होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, दिमाग का साइज जो भी हो, लेकिन दिमाग तो है ना, लेकिन उनके पास तो ये इख्तियार वाली अकल है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक अजीब सा रिश्ता है दिमाग का अकल के साथ, दिमाग नहीं है तो अकल भी नहीं है, लेकिन दिमाग है तो जरूरी नहीं कि अकल हो। ठीक है, हम इंसानों में भी बहुत से होते हैं जो कि आपको पता ही है, हम दिमाग तो होता है लेकिन अकल इस्तेमाल नहीं करते होते, बाप यानी मुहावरतन होता है ना, अकल इस्तेमाल नहीं कर रहा, अकल है लेकिन क्या खैर। तो अकल एक चीज है, बहुत अहम चीज है। सही है, अकल के अलावा जो दो इंपॉर्टेंट हिस्से कहे जाते हैं रूह के, उनमें से एक है कल्ब। ठीक है, कल्ब भी रूह के अंदर की एक चीज है। ठीक है, ये कल्ब क्या करता है, कल्ब फैसले नहीं करता, रूह ये नहीं है, कल्ब का काम वो अकल वाला काम नहीं है, अकल का काम है फैसले करना, इख्तियार उसको दिया गया। ठीक है, कल्ब का काम ये नहीं है, कल्ब का क्या काम है, कल्ब जो है ना ये जज्बात का मुकाम है, जज्बात। ठीक है, इसके अंदर जो है वो अच्छे जज्बात भी होंगे, बुरे जज्बात भी होंगे। ठीक है, इसके अंदर मोहब्बत का जज्बा भी होगा और नफरत का जज्बा भी इसी कल्ब से ताल्लुक रखता है, नफरत का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा, खौफ। ठीक है, ये खौफ और इत्मीनान, इन दोनों चीजों का ताल्लुक भी कल्ब के साथ है। ठीक है, तो कल्ब जो है ना ये जज्बात का मुकाम है, कैफियात भी कह देते हैं इसको। ठीक है, फीलिंग्स, अंग्रेजी में फीलिंग्स कहेंगे इसको, तो ये सब जो है ना इसका ताल्लुक कल्ब के साथ है। ठीक है, अच्छा एक तीसरी चीज है जिसको कहते हैं नफ्स। ठीक है, ये भी यानी इंसान के روح کا مقام, روح کا ایک مقام ہے نفس, ٹھیک ہے. نفس کا کام کیا ہے؟ نفس کا کام بھی فیصلے کرنا نہیں ہے, اور نفس کا کام جو ہے وہ جذبات کا بھی نہیں ہے, بلکہ نفس کا کام کیا ہے؟ خواہشات, ٹھیک ہے. نفس کا کام ہے خواہشات, کہ وہ خواہش کرتا ہے, کسی چیز کو دیکھتا ہے نا تو اب اس کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی اس کو اچھی صفات اگر نظر آئیں اپنے حساب سے, کوئی اچھی چیز نظر آئے, اس کو پسندیدہ چیز نظر آئے, تو اس کو اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے وہ اچھی چیزوں کی خواہش, یعنی بظاہر اچھی چیز ہے اس کی بھی خواہش ہو سکتی ہے, بظاہر بری چیز ہے اس کی بھی خواہش ہو سکتی ہے. تو نفس ہے خواہشات کا مقام, ٹھیک ہے. تو یہ جو شہوات ہوتی ہیں نا, شہوات جن کو کہ آسان الفاظ میں خواہش کہا جاتا ہے, یہ انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو خواہشات کی اتباع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے نفس کو, نفس کی اتباع کرے, ٹھیک ہے, نفس کی خواہشات کی اتباع کرے. تو یہ جو فرمایا کہ وتبع الشہوات, تو ان لوگوں نے شہوات کی اتباع کری. اب اس کے بارے میں پچھلی کلاس میں کافی بات ہو چکی ہے کہ یہاں پر شہوات سے مراد ساری شہوات نہیں ہے, بلکہ جو ناجائز شہوات ہیں جن کو کہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے, ان کی جب انسان اتباع کرتا ہے نا, تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس کو غافل کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ شاندار مکانوں کی تعمیر اور ایسی شاندار سواریوں کی سواری جس پر لوگوں کی نظر اٹھیں, اور ایسا لباس جس سے عام لوگوں میں امتیاز کی شان نظر آئے, شہوات مذکورہ میں داخل ہیں. یعنی نفس کی ایک شہوت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں, لوگ مجھے پہچانیں, لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ اگر اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کا کام سپرد کیا ہے, ٹھیک ہے, جیسے نبی ہیں تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے دین کا کام دیا کہ بھئی آپ لوگوں کو تبلیغ کریں, نیکی کی طرف بلائیں, برائیوں سے دور ہٹائیں. اب یہ نبی اگر خواہش کرتے ہیں کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں تاکہ میں لوگوں کو زیادہ اچھے سے دین کا پیغام سنا سکوں, تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں, لوگ میری طرف متوجہ ہی نہیں ہوں گے, لوگ اپنے دکانوں میں لگے رہیں گے, کاروبار میں لگے رہیں گے, کھیتوں میں لگے رہیں گے, یا اپنے بیوی بچوں میں خالی لگے رہیں گے, تو میری طرف تو متوجہ ہی نہیں ہوں گے, تو میں بات کیسے کروں گا ان سے, ٹھیک ہے. تو یہ جو خواہش ہے نا کہ میری طرف متوجہ ہوں تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں, یہ ناجائز خواہش نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ بھی اگر دین کا کام کر رہی ہیں عورتوں کے اندر, ٹھیک ہے, اور عورتوں نے عورتوں کے اندر دین کا کام کرنا ہوتا ہے, تو اگر آپ یہ خواہش کر رہی ہیں کہ بھئی لوگ میری طرف اس طرح اس وجہ سے متوجہ ہوں تاکہ میں ان تک دین کا پیغام پہنچا سکوں, ان کو دین سکھا سکوں, تو یہ ناجائز خواہش نہیں ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ میں نے جو میک اپ کیا ہوا ہے, میں نے جو فیشن کیا ہوا ہے, پہنا ہوا ہے کپڑے پہنے ہوئے, لوگ میری طرف نگاہیں اٹھا کر کے دیکھیں, ہے نا, لوگ میری واہ واہ کریں, تو اب یہ جائز خواہش نہیں ہوگی, یہ ناجائز خواہش ہوگی, ٹھیک ہے. خصوصاً اگر یہ غیر محرموں کے لیے ہو کہ جی غیر محرم مرد بھی مجھے دیکھیں, دنیا کے اندر سارے لوگ مجھے دیکھیں, جیسے کسی ماڈل کو دیکھتے ہیں, کسی اداکارہ کو دیکھتے ہیں, کسی گلوکارہ کو دیکھتے ہیں, اسی طرح سے مجھے بھی دیکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ حرام, 100% حرام اور ناجائز خواہش ہے, ٹھیک ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے پھر اس کی جو ہے نا وہ اس طریقے سے تشریح کر دی کہ بھائی آپ اپنی, اگر آپ اپنے آپ کو مشتہر کرنا چاہتے ہیں, اشتہار کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ جائز خواہش نہیں ہوگی. اچھا آگے چلنے سے پہلے کسی کا کوئی میسج آیا ہوا ہے, ڈائریکٹ ہے تو آپ لوگ پڑھ نہیں سکتے, تو سن لیں کہ لکھا ہے انہوں نے کہ عقل تو ہوتی ہے سب کے پاس, مے بی اس کا یوز نہیں آتا سب کو صحیح طرح. اب اسے جو صحیح طرح نہیں کرتا, یعنی صحیح طرح یوز نہیں کرتا, اس میں ان کا اپنا قصور ہوتا ہے, یا شیطان صحیح عقل پہ آنے نہیں دیتا, یا اس کی بھی بہت دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح عقل دیجئے. جی سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی, سوائے ان انسانوں کے کہ جو کہ مفلوج پیدا ہوئے, جن کو شریعت کے اندر مجنون کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, مجنون دیوانہ, ٹھیک ہے. یعنی میڈیکلی जो मजनून दीवाना हो, जैसे रिटार्डेड कोई बच्चा पैदा हुआ हो, उसका मेंटली जो है ना वो केपेबल ना हो, वो नहीं समझ सकता अपने सही बुरे को, ठीक है। तो ऐसा जो शख्स होता है ना, वो तो शरीयत में मजनून और दीवाना डिफाइन किया जाता है, और ऐसे शख्स के ऊपर शरीयत के अहकाम होते ही नहीं है, यानी ऐसे शख्स के ऊपर नमाज फर्ज ही नहीं है, क्योंकि वो मजनून दीवाना है, उसकी अकल जो है वो फिजिकली डिफॉर्म्ड है, ठीक है, वो अपने कोई भी काम सही से नहीं कर सकता, ठीक है, उसको समझ में ही नहीं आती बात। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, यानी लाखों में कोई एक होगा ऐसा, राइट। बाकी जितने के जितने लोग हैं, उन सब की अकल जो है वो सही है, ठीक है, यानी वो केपेबल है, उसके अंदर सलाहियत है बात को समझने की, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनका फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसा कि आपने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया, कि अकल तो है लेकिन उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। और ये जो सही तरह से इस्तेमाल कर रहे ना, इसको भी बड़ी आसान अल्फाज के अंदर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, बड़े अरसा हो गया उसको इस्तेमाल किए हुए, एक जमाना था जब वो बहुत ज्यादा हमारी क्लासों के अंदर यूज होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। अभी कल ही बल्कि सोच रहा था कि वो बड़े दिन हो गए वो टर्म इस्तेमाल नहीं करे। वो टर्म क्या थी, उस टर्म को कहते हैं पे अटेंशन करना, ठीक है। हमारी सास मरहूमा, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, तो वो ना वो अंग्रेजी उर्दू प्लस जो होता है ना मिक्स करके जब बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो वो इस तरह फरमाया करती हैं, तुम पे अटेंशन नहीं करते हो अपने बच्चों को, जब हमारी वाइफ छोटी थी तो उनको इस तरह से बोलती थी, भाइयों को पे अटेंशन नहीं करते, ठीक। तो ये जो यानी वही होता है ना, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, सही तरह से बैठे हुए हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे, काम नहीं कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, अपना सबक नहीं कर रहे हैं, तो माएँ जो है वो फिर फ्रस्ट्रेट होकर बोलती हैं, भाई तुम ध्यान से नहीं पढ़ो, आप ध्यान से तो उर्दू में तो अंग्रेजी में बोले, पे अटेंशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वही मसला होता है कि अकल तो है, इस्तेमाल करने की सलाहियत भी है, लेकिन आप पे अटेंशन नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब कि भाई जो अल्लाह वाले आपको बातें बता रहे हैं, उलमा मशायख और सालिहीन आपको जो बातें बता रहे हैं ना, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, ठीक है, बल्कि आप उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं ना, या दूसरे जो लोग हैं ना, आपकी तवज्जो सारी की सारी उस तरफ हुई हुई है, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपकी तवज्जो ही इस तरफ नहीं होगी तो फिर आपको बात कैसे समझ में आएगी और आप कैसे सही फैसले करेंगे, आपकी तो तवज्जो ही पूरी की पूरी है ना खेल के मैदान की तरफ है, या किसी फैशन शो की तरफ है, या कुकिंग शो की तरफ है, सारी की सारी, ठीक है। तो ये हमारा फैसला होता है कि हम इधर तवज्जो करना चाहें कि हम उधर तवज्जो करना चाहें। तो अब जाहिर है इस फैसले को मैनिपुलेट करता है या इन्फ्लुएंस करता है हमारा बैरूनी दुश्मन, एक दुश्मन जो कि हमारे बाहर, हमारे वजूद से बाहर रहता है, वो है शैतान, इबलीस और उसके चेले, ठीक है। वो इस फैसले, हमारे फैसलों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो हमें ना झूठ बोल बोल करके, बल्कि हकीकत क्या है कि शैतान झूठ के साथ साथ थोड़ा सा सच भी बोलता है, और सच को झूठ के साथ मिक्स करके वो तलबीस करता है। सच और झूठ को मिक्स करना ना, इसको कहते हैं तलबीस, तलबीस इबलीस, इबलीस की तलबीस, ठीक है। वो सच झूठ को मिक्स करके वो करता क्या है कि जो हमारे फायदे की चीज होती है ना, उस फायदे की चीज को हमारे नुकसान की चीज बना करके हमारे सामने पेश करता है, ठीक है, और नुकसान वाली चीज को फायदे की चीज बना करके हमारे सामने पेश करता है। इस तरीके से वो हमारे फैसलों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, कि हम सही तरफ देखने की बजाय गलत तरफ देखें, उसको अपना अपने फायदे का सबब समझें, ठीक है। तो अब शैतान से बचने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली चीज जो बताई वो दुआ बताई, ठीक है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ये दुआ है, ठीक है, कि ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ आपकी शैतान बरतूत से, ये दुआ है, ठीक है। तो शैतान से बचने के लिए सबसे पहले दुआ करनी होती है, ठीक है, और फिर दूसरी चीज क्या करनी होती है, दवा करनी होती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे किसी बैक्टीरिया की तबाहकारियों से, वायरस की तबाहकारियों से बचने के लिए पहले दुआ करनी होती है, और उसके बाद बस कुछ नहीं करना होता, अल्लाह पे तवक्कुल करके बैठ जाना होता है, नहीं, बल्कि दवा करनी होती है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से शैतान भी सबसे खतरनाक वायरस है, ठीक है, सबसे खतरनाक वायरस की तरह है, उससे बचने के लिए भी दुआ करनी होती है और उसके बाद दवा करनी होती है। ठीक है, तो आपका सवाल कवर हो गया, सारी चीजें जो आपने पूछी। अच्छा, शैतान की बात हम मान क्यों लेते हैं, तो ये हमारा अपना कसूर होता है। ठीक है, हमने शैतान की बात क्यों मानी, हमें तो नेक लोगों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए थी, उनकी बात को मानना चाहिए था। दवा मीन्स उसमें क्या करें। अच्छा, दुआ कर ली, आउज़ु बिल्लाह मिनश शैतान जी पढ़ लिया, और बहुत सारी और भी अपनी जुबान में भी दुआएं मांगनी, दिल में भी दुआएं अल्लाह ताला से खूब करनी, अल्लाह शैतान से मेरी हिफाजत फरमा दीजिए। जिस तरह आपने आसमान को जमीन बिगड़ने से रोक दिया, उसी तरह शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक दीजिए। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा इस तरह से दुआ मांगा करती थी। ठीक है, तो दुआएं खूब अल्लाह ताला से मांगनी। अब इसके बाद दवा क्या करें, तो दवा करने का मतलब ये होता है कि आप असबाब इख्तियार करें, असबाब। ठीक है, क्योंकि दुआ जो है वो मुसब्बिबुल असबाब से की जाती है। ठीक है, मुसब्बिबुल असबाब सिर्फ एक जात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, तो उनसे जो है वो दुआ की जाती है। लेकिन दवा ये असबाब, असबाब इख्तियार करना उसको दवा कहते हैं। तो असबाब इख्तियार करने का मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जो चीजें रखी हैं कि जिनकी मदद से आप अपने आप को महफूज करते हैं, तो उन चीजों को इख्तियार करना, उन असबाब को इख्तियार करना। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा, इसको भी समझना है कि जिस तरह से आप किसी बीमारी का अंदेशा होता है, तो उस बीमारी से बचने के लिए अगर आप ईमान वाले हैं, तो आप सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और उसके बाद फिर दवा करते हैं। तो दवा करने का मतलब ये होता है कि जी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी बताई हुई अदवियात को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर और मेडिसिन, तो उसी तरीके से शैतान से बचने के लिए भी डॉक्टर और डॉक्टर की बताई हुई अद्वियात। ठीक है, अब ये तो इजमाली जवाब हो गया। ठीक है, डॉक्टर और दवा, यानी जो शैतान से बचने के लिए जिसको कहते हैं रूहानी डॉक्टर, रूहानी डॉक्टर को हम शेख कहते हैं, पीर कहते हैं। ठीक है, और दवा जो होती है वो उनके बताए हुए मामूलात वो दवा होती है। तो ये दोनों चीजें हम इख्तियार करते हैं, इनको कहते हैं असबाब को इख्तियार करना। ठीक है, बाकी तफसीलात और हैं कि जी वो डॉक्टर के पास जाने का तरीका क्या होता है, कैसे बात करते हैं, कैसे उनसे दवा लेते हैं, फिर दवा के ऊपर अमल करते हैं, फिर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सारी फिर और चीजें। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी तफसीलात हैं कुछ कि जी मामूलात पे कैसे अमल करते हैं, डॉक्टर से कैसे बात करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये सारी चीजें फिर तफसीलात हैं, वो बाद की बात है। अब सारी चीजें तो इस क्लास में नहीं हो सकती। बहरहाल, तो इतना बता दिया, अब आगे चलते हैं। फसौफ यलकौना गैया। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने शहवात को इख्तियार किया और अपनी नमाजों को जाया किया, तो अन करीब हम उनको गई के अंदर डालेंगे। ठीक है, गैया का तर्जुमा हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने गुमराही से किया था, और खुलासे तफसीर में जो कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की उनका क्या हुआ तर्जुमा है, तो उसमें फरमाया था कि गैया का मतलब है आखिरत में खराबी देखेंगे, वह अबदी हो या गैर अबदी हो, यानी हमेशा हमेशा की खराबी देखेंगे या टेम्पररी खराबी देखेंगे आखिरत में। अब यहाँ पर हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह इसको मजीद खोलते हैं कि लफ्ज गई अरबी जुबान में रशाद के बिलमुकाबिल है, हर भलाई और खैर को रशाद कहते हैं और हर बुराई और शर को गई कहा जाता है। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि गई जहन्नम के एक गार का नाम है, जिसमें सारे जहन्नम से ज्यादा तरह तरह के अजाब जमा है। ठीक है, तो एक होती है यानी डिक्शनरी डेफिनेशन, राइट, लफ्जी तर्जुमा, तो हजरत ने लफ्जी तर्जुमा भी बता दिया, और उसको उसका जो जो ऑपोजिट है, जो उसका मुतजाद है यानी रशाद का लफ्ज, तो उससे उसका मुकाबला करके मजीद समझा दिया कि रशाद इसका ऑपोजिट है, वो भलाई को कहते हैं, शर को कहते हैं। और एक जो है वो नकली तर्जुमा यानी صحابی سے جو نقل کیا تو صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہنم کے غار کا نام. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کس نے بتایا کہ جہنم کے غار کا نام ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو معراج پر بھی نہیں گئے تھے رائٹ کہ جہنم دیکھ کر کے آئے ہوں. تو یہ ساری انفارمیشن صحابہ کو کس نے دی؟ نبی علیہ السلام نے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر کے بھی آئے معراج کی رات میں, اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ویسے بھی بہت ساری باتیں اس کے علاوہ بھی بتاتے رہتے تھے یہاں پر دنیا میں آ کر کے نبی علیہ السلام کو. تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے صحابہ کو بہت ساری چیزیں بتاتے رہتے تھے جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں. ویل ایک زیادہ معروف لفظ ہے عوام الناس میں, کیونکہ سب جو قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتیں صورتیں یاد کرتے ہیں تو اس میں ویل لکل ہمزہ لمزہ یہ والی صورت سبھی یاد کرتے ہیں, سورہ لمزہ جس کو کہتے ہیں. تو ویل کی تفسیر آپ نے پڑھی ہوگی وہاں پر بھی کہ ویل کے بارے میں بھی اسی طرح کا ہے کہ بربادی, ویل کو یعنی بربادی کو بھی کہتے ہیں, اور جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ویل ہے, جہنم کی وادی کا, اور یہ ایک ایسی وادی ہے غالباً اسی کے بارے میں آیا نا حدیث میں کہ جس سے کہ جہنم پوری جہنم پناہ مانگتی ہے, ویل والی وادی سے پوری جہنم پناہ مانگتی ہے. اور یہ جہنم کی وادی یہ کس کے لیے ہوگی؟ لومزا اور ہومزا کے لیے, عیب جو اور عیب گو. ایک عیب جو اس کے لیے, عیب جو کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ ہر وقت عیب تلاش کرتا رہتا ہے لوگوں کے اندر, اس نے یہ برا کیا, اس کے اندر یہ خرابی ہے, اس نے یہ ایسا خراب کام کیا, وہ اتنا برا ہے, وہ یہ ہے وہ ہے, اس کو کہتے ہیں عیب جو. ٹھیک ہے نا, یعنی سیکنگ برائی. ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے عیب گو. گو کا مطلب ہوتا ہے گویائی, بولنا. ٹھیک ہے, تو پہلے تو اس نے تلاش کیا نا لوگوں کے اندر برائی, اور پھر اب اس برائی کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کر رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں عیب گو. تو عیب جو اور عیب گو کے لیے ویل کا عذاب ہے. تو جس طرح ویل کا لفظ ہے اسی طرح سے غیہ کا لفظ بھی, کہ انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ جہنم کی ایک غار کا بھی نام ہے جس میں زیادہ سارے جہنم سے زیادہ عذاب جمع ہوتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی پھر عبداللہ ابن عباس تعالیٰ نے بھی یہی بات فرمائی کہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس زناکار کے لیے تیار کیا ہے جو اپنی زناکاری پر مصر اور عادی ہے. ٹھیک ہے, یعنی حرام زندگی گزارتا ہے, اپنے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ دوسروں کے پاس جاتا ہے, اور عادتاً یہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اصرار کے ساتھ, توبہ نہیں کرتا اس کے اوپر, نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا, بلکہ اصرار کے ساتھ عادتاً یہ زنا والا جرم کرتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دہی والے غار کو تیار کیا ہے, اور اس شراب خور کے لیے جو شراب کا عادی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ بھی جو کہ نادم نہیں ہو رہا, شرمندہ بالکل نہیں ہے, توبہ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, اور عادتاً شراب پیتا ہے, اس سود خور کے لیے جو سود خوری سے باز نہیں آتا, اور ان لوگوں کے لیے جو ماں باپ کی نافرمانی کریں, اور جھوٹی شہادت دینے والوں کے لیے, اور اس عورت کے لیے جو کسی دوسرے کے بچے کو اپنے شوہر کا بچہ بنا دے. ٹھیک ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, یہ بات بھی بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ سے پوچھتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا مطلب بتائیں آج پلیز. انہوں نے لکھا پلیز الیبوریٹ آن عیب گو اور عیب جو. اچھا, تھوڑا تو الیبوریٹ آج اس نے کیا تھا. جو کہتے ہیں سیکنگ, تلاش کرنے والا. ٹھیک ہے, جیسے کوئی کہے کہ جی حقیقت جو, ایک صاحب ہیں بھائی ہیں وہ جو آپ لوگوں کے ساتھ آج کل ام خالد کے آرٹیکل کے اوپر بات ہو رہی ہے نا, بیانات میں بھی ہو رہی ہے, اور آپ کو واٹس ایپ گروپ کے اوپر بھی بھیجا ہے ام خالد کے آرٹیکل. تو ان کے جو ہسبینڈ ہے نا وہ ہے امریکن کانورٹ, وائٹ امریکن کانورٹ, امریکہ میں رہتے ہیں. تو انہوں نے نا اپنا اسلامی نام جو ہے نا وہ رکھا ہے حقیقت جو, یعنی حقیقت تلاش کرنے والا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہوتا ہے عیب جو, عیب تلاش کرنے والا لوگوں میں. ٹھیک ہے نا, اب اس میں کیا آپ کو مزید الیبوریٹ کریں بھائی, اگر کوئی ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی کسی انسان نے کوئی برا کام کیا, اور وہ برا کام جو ہے وہ اس کی ذات سے تعلق رکھتا تھا. ٹھیک ठीक है, वो एक यानी एक जाति किस्म का बुरा काम था, तो अब उसके ऊपर हमें पर्दा डालना है, ठीक है, हमें पर्दा डालना चाहिए, हमें उसको उसकी उसकी तशहीर नहीं करनी चाहिए, बिला वजह तशहीर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन लोग होते हैं वो हर वक्त दूरबीन फिट करके लोगों के ऐब तलाश करते रहते हैं, ठीक है, और फिर यानी अपना दिल खराब करते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो ये वाला काम ये नाजायज है, खुसूसन आजकल बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में शोहर और बीवी के दरमियान ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो आपस में उन्होंने किटपिट होती रहती है और उसको जो है वो बढ़ाते रहते हैं, तो बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि शोहर ने बीवी के ऐबों के ऊपर दूरबीन फिट कर दी होती है और बीवी ने शोहर के ऐबों के ऊपर दूरबीन फिट कर दी होती है। क्या मतलब कि बारीक बारीक बातों को ना फिर वो ऐब की नजर से देख करके फिर उसको दूरबीन फिट करने का मतलब होता है कि बारीक बात को जो है वो मैग्निफाई करना, दूरबीन मैग्निफाई करके दिखाती है ना, आपको बड़ा करके दिखाती है ना, उसी तरीके से ऐबों को बड़ा कर करके, ठीक है। अब जाहिर है आप किसी करीबी रहने वाले के ऐब को जब इतना ज्यादा देखेंगे तो फिर आपका दिल जो है वो उससे बद से बदतर होता चला जाएगा, आपके दिल का कीना जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और ये कीना फिर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, राइट। सीना कीने से भर जाता है तो फिर ये सीना तो कल्बे सलीम तो फिर नहीं रहता है सीने के अंदर ना, तो ऐब जो का ये मतलब है, ठीक है, ऐबों को खूब बारीकी से देखना और फिर उसको खूब बड़ा यानी गुमान करना। ये एक बुरी सिफत है, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर आपको किसी के ऐबों का पता है, ठीक है, यानी पता चल गया, आपने यू डिडंट सीक देम आउट, आपने उसको दूरबीन फिट करके जो है ना वो तलाश नहीं किया था, भाई आप तक उसके ऐबों का इल्म पहुंच गया, किसी ने आपको बता दिया आपके ना चाहते हुए भी, आप सुनना नहीं चाहते थे लेकिन किसी ने सुना दिया, ठीक है, तो आपके इल्म में तो आ गया ना उसका ऐब, सही है। अब अगर कोई दूसरा शख्स उस शख्स से जिसके ऐबों का आपको पता चल गया है उससे कोई मुआमला करना चाहता है, जैसे कोई बिजनेस डील करना चाहता है या शादी का मुआमला करना चाहता है, ठीक है, और आपसे वो मशवरा मांग रहा है कि जी फलाने शख्स के बारे में आपका क्या मशवरा है, क्या मुझे उसके साथ ये बिजनेस डील करनी चाहिए, या अगर शादी करना चाह रहे हैं तो क्या जी मुझे अपनी बेटी की शादी वहां करनी चाहिए, और आपको पता है उसके ऐबों का, ठीक है, तो ये वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि जिसके अंदर आपके ऊपर लाजिम है कि इसके ऐबों का उसको बता दें, ठीक है, इसके ऐबों का उसको बता दें जो कि इससे मामला करने का इरादा रखता है और उसने आपसे मशवरा मांगा है, ठीक है ना। अब आप जो है ना इस यानी इसके इसकी जामिन है कि आप उसको सही सही मशवरा दें और उसके ऐबों का बता दें कि भाई मैंने देखा है इस तरह का मसला है इन लोगों के साथ, ठीक है, और मैं आपको खाली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने मुझसे मशवरा मांगा है और मैं आपकी खैरख्वाही की वजह से बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इनके साथ ये बिजनेस का मामला कर लिया तो भाई ये इन लोगों ने पहले फलाने शख्स को धोखा दिया हुआ है और मुझे पता है कि इन्होंने धोखा दिया है, ठीक है, ये झूठ बोल देते हैं, ये अपनी बात ये वादों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखते हैं, तो भाई आप इनके साथ बिजनेस डीलिंग ना करें, मेरा आपको यही मशवरा है। उसी तरीके से निकाह का भी, कोई आपसे मशवरा मांग रहा है और आपको पता है कि जी ये लोग जो है वो इस किस्म के यानी बेदीन किस्म के लोग हैं और मक्कार किस्म के लोग हैं और इनके घर के अंदर बहुओं के साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक किया जाता है, ठीक है, तो जिसने आपसे मशवरा मांगा है आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसको बताएं, और ये बताना खैर ख्वाही की वजह से हो, खैर ख्वाही की नीयत के साथ, हत्ता के हमारे दीन की तो जो तालीम है वो क्या कि खैर ख्वाही सिर्फ उसके साथ नहीं कि जिसने आपसे मशवरा मांगा है, बल्कि जिसके ऐबों का आपको पता है उसके साथ भी खैर ख्वाही है ना, जिसने मशवरा मांगा है उसके साथ तो आप खैर ख्वाही कर रहे हैं कि भाई किसी ऐब वाले शख्स से ताल्लुक बनाने से उसको मना कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल में नीयत उस बुरे शख्स के खिलाफ भी नफरत वाली नहीं होनी चाहिए, नफरत वाली नीयत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जो आप उसके खिलाफ बात बता रहे हैं मशवरा मांगने वाले को, इसकी नीयत भी खैर ख्वाही वाली। अब ये कैसे? नफरत के साथ ना बताएं, खैर ख्वाही के साथ बताएं। खाली मशवरा मांगने वाले की खैर ख्वाही नहीं, बल्कि जिसके बारे में बता रहे हैं उसके ऐब बता रहे हैं, ये भी खैर ख्वाही के साथ। ये कैसे भाई? जब तक आपका ये मैसेज पढ़ते हैं जो आपने लिखा है, सवाल का जवाब अगर कोई दे, अगर पास में हमने कुछ गुनाह देखे देखे हों या खुद किए हों और उसके बारे में बात करें, तो क्या ये ऐब जोई होगी? जैसे बेपर्दगी के बारे में, अगर आपने उनसे तौबा कर ली है, ठीक है, तो फिर जो आप अपने माजी के गुनाह के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें आपकी नियत जो है ना वो सिर्फ ये होगी कि देखो जिस तरह से मैंने तौबा कर ली है, ठीक है ना, तो उस तरीके से आप किसी और को भी बता रहे हैं कि भाई अगर आप भी इन गुनाहों में मुब्तला हैं तो आप भी तौबा कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सहाबा कराम का ये तरीका ही ये था। सहाबा कराम जब अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, दूसरों को दीन की तबलीग करते थे, इस्लाम लाने के लिए कहते थे ना, तो वो यही तो बताते थे कि हम इन इन बुराइयों में मुब्तला थे, है ना। हिजरत हबशा, हबशा की जो हिजरत का वाकया है उसको उठा के पढ़ लीजिए सीरत के अंदर। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो नज्जाशी के दरबार में तकरीर करी थी, वो क्या करी थी? सारी अपनी बुराइयां बयान करी, हम जो है वो झूठ बोला करते थे, जुल्म किया करते थे, हम ये किया करते थे, वो किया करते थे। और फिर क्रेडिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप को क्रेडिट नहीं कि हमने एक बन गए जी, हमने तौबा कर लिया, बड़े अच्छे हो गए, नहीं, उन्होंने क्रेडिट दिया नबी अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह ताला ने फिर अपना एक नबी भेजा हमारे दरमियान, उन्होंने हमें इन कामों से रोका और हम उनकी बात पर ईमान ले आए, हमने उनकी बात मान ली। इतना हमें क्रेडिट जाता है कि हमने उनकी बात मान ली, ठीक है, तो अब हम जो है वो ये सारे काम नहीं करते। बिल्कुल यही, एग्जैक्टली यही काम हमने भी करना है, ठीक है, कि पहले हम बुरे काम किया करते थे, फिर उसके बाद अल्लाह के किसी नेक वली की बात हमने सुनी, हमारे समझ में आई, हमने उनकी बात मान ली और हमने ये काम करने छोड़ दिए, ठीक है। सहाबा की सुन्नत पे अमल करना है भाई, हमने हमारे लिए जो रोशन चिराग हैं, जो रोशन कंदीले हैं, जिनके पीछे पीछे हमने चलना है, वो है सहाबा कराम, सहाबा कराम, राइट। तो ये ऐप जो ही बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी अगर इस तरह तरीके से की जाए जैसे साहब ने करी थी, ठीक है। उसी तरीके से दूसरों के बारे में भी जो बुराई है ना कि वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो उसमें भी जो है ना वो भी किसी की जात के ऊपर कीचड़ उछाड़ने की नीयत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें भी खैर ख्वाही की नीयत होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई या तो आप लोगों को उनकी किसी शर से बचाने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं खालिसतन, ठीक है, या ये कि उमूमी तौर पर बात करें कि भाई लोग ये जो गलत काम करते हैं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये फायदे, इससे ये नुकसान होते हैं, इसकी वजह से जो है वो हम हमारी जिंदगी जाया हो रही होती है, तो हमें जो है वो उनसे इज्तनाब करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है वो ऐब जो ये और ऐब कोई के अंदर नहीं आता है, ठीक है, जैसे बेपर्दगी के बारे में आपने कहा। अच्छा जी, सवाल के जवाब किसी ने भी नहीं दिया कि जब किसी ने आपसे मशवरा मांगा किसी दूसरे शख्स के बारे में, बल्कि किसी तीसरे शख्स के बारे में मशवरा मांगा कि जी मुझे उनके साथ ताल्लुक बनाना चाहिए, तो आपने जब उनके खिलाफ मशवरा दिया कि नहीं जी वो मुझे तो उनके इन मसलों का पता है, तो आप प्लीज उस घराने में शादी ना कीजिए, ठीक। तो अब इसके अंदर खैर ख्वाही आपने मशवरा मांगने वाले से तो करी, मशवरा जिसके बारे में दिया, जिसकी बुराई बयान करी, उसके लिए भी तो आपको कहा जा रहा है ना कि जी नफरत उसकी भी नहीं होनी चाहिए, तो उसकी खैर ख्वाही कैसे, उसकी खैर ख्वाही, कितना आसान सा सवाल है वैसे। या हो सकता है दूसरी बात शुरू हो गई तो आप उसको सुनने में मसरूफ हो गए, इसका जवाब रह गया। जिसकी बुराई के बारे में आप बता रहे हैं तो उसकी खैर ख्वाही कैसे भाई, उसकी खैर ख्वाही कैसे कर रहे हैं जी। नबी अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस, यानी जो फेमस हदीस है, बहुत अपने भाई के साथ भलाई करो, चाहे वो जालिम हो चाहे वो मजलूम, चाहे जालिम हो चाहे मजलूम हो। तो सहाबा ने भी पूछा था कि अल्लाह के नबी, मजलूम के साथ, मजलूम की मदद करना तो समझ में आता है ना, मजलूम की मदद करना तो समझ में आता है, जालिम की मदद कैसे करें? उसके लिए अल्लाह से हिदायत मांगे। आपसे ये कुछ थोड़ी कह रहे हैं कि क्या करें, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि उसके साथ खैरख्वाही करें। तो खैरख्वाही कैसे कैसे करेंगे आप? हिदायत की दुआ मांगना ठीक है, तो बल्कि सही है आपका जवाब, एक एक, एक जवाब तो सही है आपका कि हाँ हिदायत मांगे, उसके लिए हिदायत मांगे। लेकिन ये जो आप बुराई उसकी बयान कर रहे हैं, इस बुराई बयान करने में ही खैरख्वाही की नीयत कैसे हो जाएगी? सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, मजलूम की मदद करना तो समझ में आता है, जालिम की कैसे मदद करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था कि जालिम को उसके जुल्म से रोको, राइट? जालिम को जुल्म से रोकना, ये उसके साथ खैरख्वाही है ना, कि भाई तुम जुल्म करोगे तो तुम्हें अल्लाह का अजाब होगा, अल्लाह के अजाब से तो नहीं बच सकते हो ना, ठीक है? तो उसको जुल्म से रोकना ही उसके साथ खैरख्वाही है, ठीक है ना? तो उसी तरीके से जब आप किसी के खिलाफ मशवरा दे रहे हैं कि भाई अपने दोस्त को कह रहे हैं कि आप फलाने घराने में रिश्ता ना करें क्योंकि उन लोगों ने ये बुराइयां की हुई हैं अपनी, राइट, अपनी माजी की जिंदगी में ये सब उन्होंने किया हुआ है, तो आप उधर रिश्ता ना करें, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं आप? ये आप यही कर रहे हैं ना कि भाई आप उनको मजीद बुराई करने से रोक रहे हैं। मिसाल के तौर पर उनके घर में चार लड़के हैं, ठीक है ना, जो बुरे लोग हैं ना, जो यानी जिन जिनकी बुराई बयान की जा रही है, उनके घर में चार लड़के हैं, ठीक है? तीन लड़कों की शादी हो गई है और आप जानते हैं कि उनकी जो बीवियां हैं ना, उनके साथ उस घर के अंदर क्या सलूक चल रहा है, ठीक है? तीन बड़े भाइयों की शादी हो गई है और आपको पता है कि उस घर में उन बड़े तीन बड़े भाइयों की बीवियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, किस तरीके से उनको नौकरानी बना करके और उनके साथ जो है वो क्या क्या जुल्म होते हैं और क्या लड़ाइयां झगड़े और ये सब कुछ होते हैं, ठीक है ना? तो अब आपकी किसी दोस्त ने पूछा है कि जी उनका जो चौथा बेटा है ना, उस चौथे बेटे का रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए, तो क्या मुझे वहां पे शादी करनी चाहिए अपनी बेटी की? तो अब आपने अपनी दोस्त को कहा कि नहीं भाई, आप वहां पे ना करें क्योंकि तीन जो ऊपर की है ना, उनके साथ तो ये सब कुछ हो रहा है, आपकी बेटी के साथ भी ये सब कुछ होगा, तो आप ना करें वहां पे शादी। तो आपने अपनी बहन के, अपनी दोस्त के साथ तो खैरख्वाही कर ली, ठीक है ना, बचा लिया उसको। इनके साथ कैसे खैरख्वाही हुई? इनके साथ खैरख्वाही ऐसे हुई ना, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, कि भाई ये तीन लड़कियों पे जुल्म कर रहे थे तो इनको गुनाह मिल रहा था ना, अजाब इनके ऊपर अल्लाह ताला का वाजिब हो रहा था ना। अब अगर चौथी भी ऐड हो जाती तो क्या होता, एक गुना और अजाब इनके ऊपर ऐड हो जाता, राइट? एक गुना और अल्लाह ताला के अजाब के मुस्तहिक बन जाते ये लोग, है कि नहीं है? है कि नहीं? ऐसे ही है ना। तो भाई पहले उनको कम सजा होनी थी, अब उनको ज्यादा सजा होनी थी, तो आपने उनके साथ खैरख्वाही नहीं करी क्या कि उनको चौथी के साथ जुल्म करने से भी रोक लिया, ठीक है ना? अपने तौर पे तो आपने रोक लिया ना, बाकी अल्लाह की मर्जी, भाई किसी और के ऊपर करेंगे, आपके हाथ में जो था वो तो आपने कर लिया ना, राइट? एक इंसान की जिंदगी मजीद खराब करने से उनको रोक लिया, अब हो सकता है उनके चौथे बेटे को जो है वो आगे कोई रिश्ता ना मिले, ये आपका काम तो नहीं है ना, वो तो अल्लाह का काम है ना, आपने अपना काम तो कर लिया ना, ठीक है ना? तो आपने उनको मजीद जुल्म करने से रोक लिया, बचा लिया उनको, ठीक है ना? हो सकता है थोड़ी उनको और मोहलत मिल जाए, अब वो तौबा कर लें अपने इन गुनाहों से, ठीक है, हो सकता है अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे दे, लेकिन फिलहाल तो वो वही वाली हरकतें कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ना, दिल के अंदर नीयत करनी कि भाई मैं किसी के खिलाफ अगर मशवरा दे भी रहा हूँ ना, उसी तो ये भी मैं उनको बुराई से बचाने के लिए मशवरा दे रहा हूँ। बिजनेस डीलिंग के अंदर भी इसी तरीके से, उन्होंने पहले अपने पार्टनर्स को धोखा दिया था, अब आप कि दोस्त ने आपसे मशवरा किया कि मैं उनके साथ पार्टनरशिप कर लूं कि नहीं कर लूं, तो आपने अपने दोस्त को मना कर दिया, ठीक है ना। तो अगर आपका दोस्त उनके साथ पार्टनरशिप कर लेता तो फिर वो एक और पार्टनर को धोखा देते, तो आपने उनको धोखा देने से बचा लिया ना, एक और पार्टनर की जिंदगी खराब करने से बचा लिया ना, ठीक है। तो ये भी तो खैर ख्वाही है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए लाजमी क्या है, इसके लिए शर्त क्या है इस तरह की खैर ख्वाही करने के लिए, ये आपने तो पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, आप इस दूसरे सवाल को अगर कर लिया तो इसका जवाब तो पता नहीं रात का टाइम ही खत्म हो जाएगा, इसलिए कि ये जरा मुश्किल सवाल है कि ये जो है ना जालिम के साथ खैर ख्वाही, इस जालिम के साथ खैर ख्वाही करने के लिए शर्त क्या है। चले आपसे अच्छा गुमान रख के सवाल कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप जवाब दे लेंगे। जालिम के साथ खैर ख्वाही करने के लिए एक चीज शर्त है, इंग्रेडिएंट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट, वो क्या है जी? जालिम के साथ खैर ख्वाही, मजलूम के साथ खैर ख्वाही आसान काम है, उसके लिए इतना आपको इस इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जालिम के साथ खैर ख्वाही करने के लिए इस एसेंशियल इंग्रेडिएंट की जरूरत है, उसके बगैर आप जालिम के साथ खैर ख्वाही कर नहीं सकते। वो क्या है? नरमी से बात करना, नहीं, यहाँ पे जो आप कर रहे हैं ये इसमें तो बात तो आ ही नहीं रही ना, आप जालिम के साथ तो आपकी कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही ना, ठीक है। तो ये नरमी से बात करना यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं होता, आप कोई दावत तो तब्दील करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं उनके पास। यहाँ मशवरे वाली जो बात आपको बता रहे हैं ना, तो इस मशवरे वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप जालिम से तो बात करने जा ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। जुल्म से नफरत जालिम से नहीं, नहीं अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। बड़ों से जुड़ने की कोशिश करें, अब माशाल्लाह सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हर अच्छी बात हर जगह अप्लाई तो नहीं होती है। यहाँ पे एक अलग कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, अलग कॉन्टेक्स्ट सही। अगर वो जुल्म करे तो आप बदला ना लें, ये भी एक अच्छी बात आपने करती है, लेकिन सवाल तो ये नहीं है, ईमान वाला हो। इसको जरा खोलें, ईमान वाला हो क्या मतलब? चलिए उन्होंने कम से कम हिंट दे दिया सबको, ईमान वाला हो। अब इसके ऊपर तो जवाब और आसान हो गया, माशाल्लाह उन्होंने आसानी कर दी सबके लिए, ताकि आगे उसको सही हिदायत भी मिले। खैर चले कुछ और कह रहे हैं, इस्लाह की नियत हो, खौफ खुदा हो। ईमान वाला का जो लफ्ज है ना, ये असल में जवाब था, ठीक है, लेकिन जवाब देने वाले का मतलब कुछ और था और हमारा मतलब कुछ और है। भाई देखें, नसीहत करने वाला जो है ना, खैरख्वाही करने वाला, वो ईमान वाला, ठीक है। देखें, आपकी सहेली की बेटी के लिए रिश्ता आया उस घर से, जिस घर के अंदर बहुओं के ऊपर जुल्म होता है, ठीक है। तो अब जो आपने अपनी सहेली को मशवरा दिया कि देखो तुम अपनी बेटी की शादी वहां ना करना, ठीक है, ये जो आपने मशवरा दिया है, ये किस बुनियाद पर आपने मशवरा दिया है? आपने अपने गैबी इल्म की बुनियाद पर मशवरा दिया है या किस चीज की बुनियाद पर मशवरा दिया है? आपको कैसे पता चला कि उस घर के अंदर लड़कियों पे जुल्म होता है, बहुओं पे जुल्म होता है? आपको कैसे पता चला कि उस घर में बहुओं के ऊपर जुल्म होता है? कैसे पता चला आपको? सुना होगा या देखा होगा, खुद, राइट, खुद देखा होगा या खुद सुना होगा किसी से, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, सुना होगा ये भी, अपने किसी दोस्त से सुना होगा, किसी रिश्तेदार से सुना होगा, ठीक है, अल्लाह के नबी से सुना था, आपने किसी अल्लाह के नबी से सुना था कि जी उस घर के अंदर जुल्म होता है। अल्लाह के नबी तो आपको आके ये बातें नहीं बताते ना कि फलाने घर के अंदर बहुओं के साथ जुल्म होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो नबियों के वारिस होते हैं उलमा और मशाइख, वो भी कोई आपको आके ये तो नहीं बताते ना कि जी फलाने घर के अंदर बहुओं के साथ जुल्म होता है। आपने किससे सुना? आपने अपने किसी रिश्तेदार से सुना, आपने अपने किसी दोस्त से सुना, या आपने खुद मुशाहिदा किया उसका, ठीक है ना, कि उस घर के अंदर बहुओं के साथ जुल्म होता है। ठीक है, तो ये जो आपने अपने दोस्त को मशवरा दिया कि उस घर के अंदर लड़कियों के साथ जुल्म होता है, ये किस बुनियाद पर था? ये मुशाहिदे की बुनियाद पर था ना, राइट? ये मुशाहिदे की बुनियाद पर था ना। ठीक है, बात समझ में आते हैं ना, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी कि उस घर के अंदर जुल्म होता है। आपने अपने दोस्त को मशवरा दिया कि उस घर में अपनी बेटी की शादी ना करना क्योंकि उस घर के अंदर जुल्म होता है, ये आपका मुशाहिदा था। ठीक है, तो आपने अपने दोस्त के साथ खैर ख्वाही जो करी, ये मुशाहिदे के बुनियाद पर करी। यहां तक समझ में आ रही है बात? अगर किसी को ये वाली बात ना समझ में आई तो क्लियर कर लें, इसलिए कि इसके बगैर अगली बात समझ में नहीं आई। ठीक है, समझ में आ रही है? मुशाहिदे की बुनियाद पर आपने अपनी दोस्त के साथ खैर ख्वाही करी। ठीक है, अगर ये मुशाहिदा ना होता तो आप अपने दोस्त के साथ खैर ख्वाही नहीं कर सकती थी। ठीक है, अगर आपको ये मुशाहिदा ना होता उस घर के बारे में तो आप अपने दोस्त के साथ खैर ख्वाही नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि उस घर में क्या होता है। ठीक है, लेकिन जालिम के साथ खैर ख्वाही, यानी जो लोग अपने घर की बहुओं के साथ जुल्म करते हैं उनके साथ खैर ख्वाही के लिए, अब बता दें, अब आसान है जवाब, इसके लिए किस चीज की जरूरत है? कौन सा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि जिसके बगैर आप जालिम के साथ खैर ख्वाही नहीं कर सकते? मुशाहिदा या क्या चीज? म्यूचुअल रिलेशन से ये खुद आंखों देखा। ठीक है, तो जालिम के साथ खैर ख्वाही के लिए किस एसेंशियल इंग्रेडिएंट की जरूरत है? अल्लाह रहम करे हमारे आगे आने वाली नस्लों के ऊपर कि जिनकी वालदाओं को ये बात नहीं समझ आ रही। 20 वालदाएं मौजूद हैं तकरीबन, जी, जालिम के साथ खैर ख्वाही के लिए किस एसेंशियल इंग्रेडिएंट की जरूरत है? जालिम जब जुल्म करता है तो क्या होता है उसके साथ? दुनिया में अजाब होता है उसको, अक्सर तो दुनिया में कुछ कुछ नहीं होता उसको, दुनिया में तो वो बड़ी ठाट की जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना। जालिम दुनिया में तो बड़ी ठाट की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, है ना। मिसाल के तौर पर अमेरिका के जो सदर हैं, उन्होंने इराक के अंदर हजारों को मरवा दिया, लाखों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, है ना। अमेरिका के सदर को आपको कोई अजाब होता हुआ नजर आ रहा है? ना तो बुश को अजाब हुआ, ना जो है वो क्लिंटन को अजाब हुआ, ना जो है वो बराक ओबामा को अजाब हुआ, है ना, जिन्होंने कि चढ़ाई करी थी अफगानिस्तान के ऊपर, लीबिया के ऊपर और इराक के ऊपर। किसी को अजाब होता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो जालिम को तो सजा मिलती हुई नजर नहीं आती ना, जालिम को सजा का मुशाहिदा नहीं होता, उमूमी तौर पर किसी को नहीं होता मुशाहिदा। तो फिर जालिम के साथ खैरख्वाही किस बुनियाद पर करेंगे कि उसको अजाब होगा? भाई एक लफ्ज है जो कि आपके मुंह से या जुबान या उंगलियों से अदा नहीं हो पा रहा, क्या मसला है इसका? भाई जालिम को, जालिम के साथ खैर ख्वाही के लिए जो शर्त है वो क्या है? मुशाहिदा। अल्लाह उसका हिसाब देगा, तो इसको क्या कहते हैं? अल्लाह उसका हिसाब देगा, इसको कहते हैं ईमान। मुशाहिदे के मुकाबले पर क्या चीज होती है? ईमान। ठीक है, जालिम के साथ खैर ख्वाही के लिए ईमान शर्त है। ईमान क्या? कि जो जुल्म करेगा वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेगा। ये क्या है? ये ईमान कहलाता है, ये, राइट? आखिरत पर ईमान, अल्लाह के वादों पर ईमान, ہے نا. تو ظالم کے ساتھ خیر خواہی وہی بندہ کر سکتا ہے جس کا کہ ایمان ہو, جس کا کہ ایمان ہو اللہ کے وعدوں کے اوپر, آخرت کے اندر پکڑ کے اوپر, وہ ظالم کے ساتھ خیر خواہی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جس کے اندر ایمان نہ ہو تو وہ ظالم کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تو مشاہدے کی زندگی گزار رہا ہے نا, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ بھئی جس یعنی اچھا انہوں نے اس کے ساتھ برا کیا تو پھر یہ اس کے ساتھ بھی برا کریں گے. یہ تو لاجک ہے, رائٹ. یہ تو انفرنس ہے, رائٹ. ایک چیز کو آپ نے دیکھ کر کے اس کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا کہ ہاں دوسرے کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کرے گا. یہ تو بھائی مشاہدے کی بنیاد پر آپ نے خیر خواہی کری نا. مظلوم کے ساتھ یا اپنے دوست کے ساتھ جو آپ نے خیر خواہی کری ہے, یہ تو مشاہدے کی بنیاد پر خیر خواہی کری ہے. ظالم کے ساتھ خیر خواہی مشاہدے کی بنیاد پر نہیں ہوتی, ظالم کے ساتھ خیر خواہی ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے. مشکل سوال تھا کوئی, لیکن عجیب. تو اگر ابھی بھی نہ سمجھ میں آئے تو کوئی ڈائریکٹ میسج کر دیجیے, کیونکہ انڈائریکٹ میسج کریں گے تو آپ کی تو پھر اچھی خاصی ہو جائے گی نا. آپ ڈائریکٹ میسج یعنی پرائیویٹ میسج کر کے پوچھ لیں اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. صحیح ہے جی. اچھا یہ پڑھ لیتے ہیں کم از کم, تھوڑا کم زیادہ آگے بڑھیں. تو آگے فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی, ختم تو ہم نہیں کر سکیں. ماں باپ کی نافرمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ اس کا بھی کسی نے جواب نہیں دیا. ماں باپ کی نافرمانی کا مطلب یہ اتنا لازم ہے اس دور کے اندر سمجھنا کہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کوئی کوشش کریں گے ماں باپ کی نافرمانی کا مطلب سمجھانا, کیا ہوتا ہے مطلب. ابو لہب کا بیٹا تھا, اس کا نام کیا تھا, عتبہ یا شیبہ, یہ دو بیٹے تھے نا, عتبہ اور شیبہ, ٹھیک ہے. تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا, اور ان کی بیٹیوں کو, ان کی جو بیٹیاں ہیں نا جو تمہارے نکاح میں ہیں, ان کو دے دینا طلاق, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ جی جو ماں باپ کی نافرمانی کرے نا تو وہ تو غی کے اندر جائیں گے. تو پھر وہ ابو لہب کے بیٹوں نے جو ابو لہب کی نافرمانی تو نہیں کری, انہوں نے تو فرما برداری کری اپنے باپ کی, ہے نا. نبی علیہ السلام السلام کی بیٹیوں کو طلاق بھی دے دی, اور نبی علیہ السلام السلام کے ساتھ بدتمیزی بھی کری ان میں سے ایک نے جا کر کے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو پھر کامیاب ہو گیا, کیا خیال ہے. تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا فائدہ مند ہوا کہ نقصان دہ ہوا. تو ماں باپ کی نافرمانی کا مطلب پھر کیا ہے, کریں کہ نہ کریں. اچھا وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوئی ہوگی بہت, جو جس کی بنیاد یعنی جو کہ دین اسلام کی بنیادی حدیثوں میں سے, کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, ٹھیک ہے. کہ بھئی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے اندر جائز نہیں ہے, چاہے وہ مخلوق ماں باپ کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو ابو لہب کی جو بات ان لوگوں نے مانی تو وہ جائز نہیں تھی, اگرچہ کہ وہ ان کا باپ تھا, کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی, اللہ کی نافرمانی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ اصول تو سمجھ میں آ گیا نا, ٹھیک ہے. اس کے اوپر کوئی آپ میں سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا, امید ہے, ٹھیک ہے. کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے اس بات کو, ماں باپ کی تو پھر بھی فرما برداری کرنی چاہیے چاہے وہ اللہ کی نافرمانی, ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ بات تو نہیں کہے گا. تو سوال یہ ہے کہ تو پھر ماں باپ کی فرما برداری کا جو لفظ ہوتا ہے یا نافرمانی کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ ہوتا ہے نا الفاظ کچھ ہوتے ہیں مطلب تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. آج ہم آپ سے پہلی دفعہ کسی سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ نافرمانی کا مطلب کیا ہے پھر, ٹھیک ہے. شریعت نے جو ان کے احکام اور حقوق رکھے ہیں ان کو نہیں ماننا ان کی نافرمانی ہے. شریعت نے جو ان کے احکام, شریعت نے ان کے احکام نہیں رکھے, شریعت نے ان کے حقوق رکھے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو نہ ماننا ان کی نافرمانی ہے, ٹھیک ہے. یہ اچھا جواب ہے, ٹھیک ہے. شریعت نے جو ان کے حقوق رکھے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو نہ ماننا. اچھا سوال بھی ویسے یہی تھا کہ جی ان کے حقوق ہیں کیا. ایک لفظ میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں, ایک لفظ چاہیے خالی, ٹھیک ہے. वो लफ्ज ये है अदब करना उनका, अदब करना, ठीक है, हुस्ने सुलूक करना, बिल्कुल सही फरमाया, हुस्ने सुलूक करना, अदब करना, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो बदअकीदा हो, मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे किसी के माँ बाप कादियानी हो, ठीक है, किसी के माँ बाप सहाबा के दुश्मन हो, राइट, अकीदा यानी बदायर जो है वो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं लेकिन अकीदतन वो बिल्कुल गलत है, सहाबा की दुश्मनी कर रहे हैं, या कादियानी गुलाम मिर्जा कादियानी को फॉलो कर रहे हैं, या आजकल के दौर के अंदर जो मॉडर्न कादियानी आए हुए हैं, ये क्या नाम है उसका, क्या नाम है वो जो मीडिया स्कॉलर, तो मिर्जा अली नहीं, एक और है, ये तो इंजीनियर मिर्जा है ना, एक और है जो जरा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो साहब गांधी, जावेद अहमद गांधी, ये मॉडर्न कादियानी है असल में, ठीक है ना, क्योंकि खुल करके ये कादियानी की हिमायत करता है मिर्जा, ये जावेद अहमद गांधी, ठीक है, तो आजकल तो वालिदैन जो जिनके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, बच्चे जॉब कर रहे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, तो जो वालिदैन फारिग घर में बैठे होते हैं तो हर एक के हाथ में टीवी होता है, ठीक है ना, सेलफोन होता है, तो उसके ऊपर टीवी मौजूद है, अब सारे के सारे टीवी, और जाहिर है पाकिस्तानी हैं तो दीनदार तो होना जरूरी है, ठीक है, इंडिया में भी अक्सर दीनदार मुसलमान होते हैं और पाकिस्तान में तो हर बंदा ही दीनदार होता है, इल्ला वुमेन मार्च वाले लोगों को छोड़ करके बाकी सारे दीनदार हैं पाकिस्तान, ठीक है, तो अब वो जो है वो हाथ में टीवी है और दीन भी साथ साथ दीन का शौक भी लगा हुआ है, तो टीवी पर दीन और टीवी पर दीन जो है वो तो फिर गांधी की शक्ल में आता है, ठीक है ना, तो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त बुजुर्ग लोग जो हैं वो गांधी फैन बने हुए हैं, है ना, जावेद अहमद गांधी के फैन बने हुए हैं, ठीक है, इतना प्यारा और आसान दीन जो जावेद अहमद गांधी साहब का है उससे ज्यादा अच्छा दीन कौन सा हो सकता है, ना उबिल्ला, ठीक है ना, कुफर नकल कुफर कुफर नबाशत, ठीक है, तो बहरहाल तो अब आपके वालदैन जो है वो गांधी के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो हुस्ने सलूक तो उनके साथ भी करना है, ठीक है ना, अदब तो उनका भी, अदब का मतलब क्या, गलत बात बोल रहे हैं जी जी जी, बहस ना करें, झिड़के ना, आगे से कोई जो है वो ऐसा ना करें कि अब उनको मैं खाना नहीं दूंगी, है ना, कि भाई वो तो जावेद अहमद गांधी के सपोर्टर हैं या गुलाम अहमद कादियानी के सपोर्टर हैं या जो है वो किसी और दीन को पसंद करना शुरू हो गए, काफिर हो गए, अब मैं उनको खाना ही नहीं दूंगी, नहीं, उनको आपने उनकी सारी जरूरियात पूरी करनी है और उनके साथ अदब के साथ ही खड़े होना है, ठीक है ना, अदब से उनकी खिदमत करनी है, कुछ उन्होंने गलत कर दिया, खराब कर दिया, गंदा कर दिया, सफाई करनी है उसकी, ठीक है ना, तो ये है माँ बाप की नाफरमानी करना कि उनके साथ बेअदबी का सलूक करना, है ना, बुरा सलूक करना, सू यानी हुस्ने सलूक की बजाय सुए सलूक करना, ठीक है ना, उनकी अतात करना ये मशरूत है, हुक्म उसी वक्त मानेंगे जब वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के खिलाफ ना हो, ये शर्त है, इस शर्त के साथ उनकी अतात की जा सकती है, इस शर्त के बगैर उनकी अतात नहीं की जा सकती, और बदकिस्मती हमारी अब जो भी बोले उसको, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हालात ये हैं कि माँ बाप अक्सर हालात में, अक्सर घरों के अंदर ये गुनाह का हुक्म और नेकी से रोकना ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ना ये जो है ना माँ बाप की नाफरमानी, ये इस दौर के अंदर इसको समझना जो है ना ये लाजमी है दीन की हिफाजत के लिए, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो आप अपने दीन की हिफाजत नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वही कंफ्यूजन रहती है, नहीं माँ बाप जो बोल रहे हैं तो वो तो लाजमी मानना है, अब चाहे वो दीन के खिलाफ बोल रहे हो, अकीदे के खिलाफ बोल रहे हो, अमल के खिलाफ बोल रहे हो, कुछ भी कर रहा हूँ, नहीं जी माँ बाप हैं, उन्होंने मेरे जो है वो ये किया है, उन्होंने मेरे साथ वो किया, उन्होंने मेरे इतने ख्याल रखा है, तो जी उनकी बात माननी जरूरी है, ठीक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि माँ बाप ने जो हमारे साथ अच्छा मामला किया है ये अल्लाह की तरफ से उनके दिल में जो हमारी मोहब्बत पैदा की गई थी ना ये उस वजह से किया है, अगर अल्लाह ताला उनके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा ना करता, जैसा कि दुनिया में बहुत से ऐसे माँ बाप भी पाए जाते हैं जो कि अपने बच्चों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं ना, ठीक है, तो भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि पेट से अगर आप निकले हो तो इसका मतलब ये है कि मोहब्बत भी है, जरूरी नहीं है ये, یہ 100% لازمی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسی بھی بہت ساری مائیں ہیں جو کہ عیدی کے کچرے خانے میں جا کر کے پھینک دیتی ہیں یا دریا میں بہا دیتی ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھوڑ دیتی ہیں, یا ایسے بھی واقعات ہیں گھر کے اندر اوون کھولا, اوون کے اندر بچے کو ڈال دیا, بچہ وہیں جل کر کے بھسم ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ بھی ماں ہی تھی, ہے نا, یہ بھی اس کی بایولوجیکل ماں ہی تھی جس نے یہ سارے کام کیے نا, ٹھیک ہے. تو بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں نا, ماں باپ کا شکر تو اللہ کے شکر کے بعد ادا کرنا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی, انہوں نے ہماری ان ساری ضروریات کا خیال کیا. تو بھائی اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ ماں باپ جو ہے وہ اگر ہمیں اللہ کے خلاف بات کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کے ماں باپ کی ماننا شروع کر دیں. یہ تو جائز ہی نہیں ہے, تو حرام ہے, ٹھیک ہے. سورہ سے اس کانسیپٹ کو بہت ضروری ہے سمجھنا, ٹھیک ہے. بس ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے, تو باقی ہم بعد میں پڑھیں گے ان شاء اللہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.